जसोदानन्दन व्रज जन रंजन जमुना तेरा वनचारिन जमुना तेरा वनचारिन जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री राधा माधव की राधा श्याम सुंदर जीव की श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की श्री श्री गौर निताय जीव की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ जदौरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठौ भुजान्तरं दुर्जुगलं तथान्नौ कण्ठस्तु राजन् नवम यदीयौ मुखारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टम् शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सृहितावतारम् अशेष संसार समुद्र सेतुं भागवतं भजामहे श्रीमद्भागवत स्वरूपं भजामहे। ये भागवत के द्वादश जो अंग है, भगवान के द्वादश अंग, ये भागवत के द्वादश स्कंद है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों के श्लोक है, पादौ यदीयो जो प्रथम और द्वितीय जो चरण है, ये भगवान के प्रथम और द्वितीय स्कंद है। तृतीय चतुर्थ तो जंघा है, पंचम नाभि है, षष्ठ वक्षस्थल है, सप्तम अष्टम उनकी बाहु जुगल है, कंठस्थ राजन नवम कंठ है, और दसम प्रफुल्ल है, एकादश ललाट है, असिर द्वादश स्कंद है। अगर कोई इसी को पाठ करते रहे, इस अपार संसार समुद्र से तुम इस संसार सेतु को वो आसानी से पार कर लेंगे, अगर वो भागवत की सेवन करे और अध्ययन करे। तो अभी बहुत आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के आठवा स्कंद अध्याय तीन श्लोक क्रमांक चार। जसात्मनेदं निजमाय अर्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्षि उभयं तदीक्षते स्वात्ममूलो बतु मम परात्परम्। जसात्मनेदं निजमाय अर्पितम् क्वचिद् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ध दृक् साक्ष्युभयम् तदीक्षते स्वात्ममूलो वतु मम परात्परम्। निजमाय अर्पितम् क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ध दृक् साक्षि उभयम् तदीक्षते स्वात्ममूलो वतु मम परात्परम्। आत्मनिदं निजमाय अर्पितम् क्वचिद् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ध दृक् साक्षि उभयम् तदीक्षते यसात्मनेदं निजमाय अर्पितम् क्वचिद् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् मताये जसात्मनिदं निजमाय अर्पितम् क्वचिद् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ध दृक् साक्षि उभयम् तदीक्षते स्वात्ममूलो वतु मम परात्परम्। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। जह जो भगवान स्वात्मने अपने से इदम इस शरीर इस विराट जगत को निज माया अपने निज शक्ति से अर्पितम लगा हुआ कचित कभी कभी कल्प के प्रारंभ में विभातम प्रकट इत्यादि कच कभी कभी प्रलय के समय तत् ओ अर्थ जगत तिरोहितम अदृश्य अविद्ध दृक् ये सब कुछ देखते हैं। इन सभी परिस्थितियों में साक्षी गवाहा उभयम दोनों उत्पत्ति तथा प्रलय तद इक्षते दृष्टि की होने के बिना सब कुछ देखते हैं। स ए भगवान आत्ममूल आत्मनिर्भर अन्य कारण न होने पर अब तू कृपया हमें संरक्षण दे माम मुझको परात्परः विराट से भी दिव्य समस्त अध्यात्म से परे। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्याप्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। ये सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य फल प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों है। इस प्रकार ये सभी वस्तुओं से परे है, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां अनेक है, फराश शक्ति विविधैव श्रूयते। अतएव जब भी ये चाहते हैं अपने किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस तरह विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं, पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट हो जाता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है। फिर भी ये अच्युत सर्वोपरि प्रेक्षक है, ये किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। ये मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार से पृथक रहते हैं। यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त है। श्रील प्रभुपाद इससे पहले हम लोग सुन चुके हैं कि गजेंद्र किस प्रकार से गजेंद्र स्तुति प्रारंभ किए कि ये परिवार परिजन मुझे रक्षा नहीं कर पाएंगे। ग्राहे न पासे न विधातुरावृतो अपि अहम चतम जामि परम परायणम। मैं उस प्रभु के शरण में जाएंगे जो प्रभु सबकी रक्षा करते हैं, क्योंकि परिवार जो सजन जो है वो मुझे रक्षा करने में समर्थ नहीं है। कुतः करिन्न, ये हाथिनिया कैसे रक्षा कर लेंगे, नहीं रक्षा कर पाएंगे। नो मचयितुम प्रभवंती, मुझे रक्षा करने में समर्थ कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं परम प्रभु के शरण में जाऊंगा, ये निर्णय कर लिया। हाथी होने पर भी उन्होंने ये निर्णय लिया। तो प्रश्न होता है, सिद्धार्थ में प्रश्न उठाते हैं, भाई तुम जिसके शरण में जाओगे उसको तुम जानते हो? को ओसो कम शरणम जासी, वो कौन है जिसको तुम शरण में जाएंगे? को ओसो जम शरणम जासी तत्रह स कश्चनेति। उसके श्लोक में बोलते हैं, ज कश्चनेशो बोलिनो अंतक उरगत प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम भाति भीतम प्रपन्नम परिपाति जद भयात मृत्युः प्रधावतरणम तमेमहि। बहुत सुंदर श्लोक है कि मैं जो प्रभु सबके स्वामी है, मृत्यु भी जिसके भाई से भयभीत है, क्योंकि मृत्यु जो है एक काल रूप सर्प है, ये सबको खा जाएगा, कोई संसार में कोई रहेगा नहीं। बोलिना अंतक उरोगाद, बोलिना वो बहुत बलशाली है, जो मृत्यु रूपी साफ है वो बहुत बलशाली है, अंतक है, सबको अंत करने वाले है। उरोग मतलब जो उर से टेक पर चलते हैं, छाती के बल पर चलते हैं, उरोग अर्थात सर्प, काल सर्प। प्रचंड वेगाद, जिसका पराक्रम बहुत प्रचंड है, उससे कोई पार नहीं पाएगा। तो फिर आपको आप कैसे पास जाओगे? न कि मैं प्रपन्न हो, भीतम प्रपन्नम परिपाति जद भयात, जो प्रपन्न है प्रभु उसकी रक्षा करते हैं, जो मृत्यु भय से भयभीत होकर संकट में पड़े हैं, अगर वो भगवान की शरण में जाए भगवान उसकी रक्षा करते, ये उनकी उनका विश्वास है। आज गजेंद्र मृत्युपात से बचने की तैयारी नहीं कर रहे कि भव बंधन से मुझे छुटकारा मिल जाए, इसकी तैयारी कर रहे, इसके लिए स्तुति कर रहे। संसार भय से भीत नहीं है, वो संसार की जो आवागमन है, जन्म मरण की जो चक्र है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। भीतम प्रपन्नम परिपाती, परिपाती मतलब रक्षा शरण, प्रभु शरण देंगे मुझे, मुझे रक्षा करेंगे। जद भयात मृत्यु प्रधावती अरणम तम इमही, मृत्यु जिसके जिसके सहारे चलते हैं, जिसके अनुगमन करते हैं, जिसके मृत्यु भी जिसके आदेश से काम करते हैं, मृत्यु स्वयं कुछ नहीं कर पाते, प्रभु के आदेश है सबको मारना है, तो जद भयात भागवत में एक श्लोक है, जद भयात बाति बातोयम मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षत इंद्र महत्ताग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु भी मेरी भय से सब काम कर रहे हैं। मद भयात बाति बातोयम, ये हवा चल रही है, ये भगवान की भय से, इंद्र सूर्य तप रहे भगवान की भय से, इंद्र वर्षा कर रही है ये भगवान के भय से, मृत्यु भी काम कर रहे प्रभु के भय से, ये भागवत के श्लोक है। श्रुति में भी एक श्लोक है कि परेशम भीषाद अस्माद अग्नि इंद्रश्च मृत्यु धावती पंचम, मृत्यु भी भगवान से भगवान के आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, भगवान के अनुगमन करते। अच्छा यह प्रश्न होता है कि हाथी की शरीर है, शरीर तो हाथी जड़ है, उसका इसे कैसे स्मरण हो गया, जड़ शरीर है हाथी, इस पूर्व जन्म में क्या किया उसका तो कुछ पता नहीं, किंतु इस जन्म में ये जो हाथी के शरीर में भगवान की स्तुति कैसे कर लेंगे। उसका टीकाकरण लिखे है कि मृत्यु मृत्यु अनु विद्या मृत्यु का अनुगमन करते हैं, मृत्यु के बाद भी विद्या रहते हैं, विद्या कभी नष्ट नहीं होता है। तो जाएगा उसको श्लोक आएगा, ज कश्चने सो बोलिनो अंत को ऊरोगात प्रचंड वेगात अभिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति जद भयात मृत्यु हो प्रधावत तरणम समेमहि, में उस प्रभु के शरण में जाएंगे जो प्रभु सबको शरण, जो शरणागत को उन्हीं रक्षा करते हैं। इस श्लोक की तात्पर्य यही है, क्योंकि मैं भीत हूँ, मैं संकट में हूँ, मैं और किसी के शरण में नहीं जाएंगे, मैं प्रभु के ही शरण में जाएंगे। तो कारण कि काल सब कुछ नष्ट कर देंगे। आज कोई ये नहीं कह सकते कि जो आज भारत में है कोई विदेश में जाकर छिप जाएंगे, वो छिप नहीं पाएंगे, किसी कोई व्यक्ति काल से बाच नहीं पाएंगे। भागवत में एक श्लोक है, ग्रस्तम कालहीना जगत, ये जगत ग्रस्त माने काल के अधीन है, ये जगत काल से बाच नहीं पाएंगे। तो वही प्रभु के शरण में जाएंगे जो प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। और हम सबको जैसे काल जो है धीरे धीरे से निकालते हैं, एक साथ नहीं खाते, जैसे किसी का अवस्था 50-60 हो गया, मतलब अभी आखिरी समय पहुंच चुका है, आधा तो गिल चुका है, आधा थोड़ा सा बचा कुचा है, जैसे सिर खा जाएंगे समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो अजगर है वो धीरे धीरे से खाते हैं, वो एक साथ नहीं खाते, धीरे धीरे से पैर से लेकर सिर तक जाते, धीरे धीरे से उसका खाते। तो इसी प्रकार काल जो है, हम सबके जो काल सर्वमंडल सिर पे घूम रहे, ये धीरे धीरे से सबको नाश कर रहे हैं। आज हमारा 50-60-70 जो भी हो गया, मतलब आखिरी पड़ाव है, अभी जितना हो सके भजन कर लेना चाहिए इसके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गजेंद्र जी सुत गोस्वामी सोनकादि सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं एवं व्यवस्थिता। इस प्रकार जब निर्णय कर लिया, इस प्रकार जब निर्णय किया एवं व्यवस्थिता बुद्धा समाधाय मनोरिधि, इस प्रकार जब निर्णय कर लिया कि मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है, तो मन को हृदय में स्थित कर दिया, मन को हृदय में स्थित कर लिया, क्योंकि हृदय में प्रभु है। मनोहृदय जजाप परमम जापम प्राग जन्मने अनुशिक्षितम, प्राग जन्मने अनुशिक्षितम एवं व्यवस्थिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय, मन को हृदय में स्थापित किया, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानम हृदय से अर्जुन तिष्ठते। ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सभी जीव के हृदय में रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, क्योंकि प्रभु हृदय में है। हाँ, सब देखते ना, बचपन में हम लोग कहते हैं कि भाई छाती में हाथ देकर बोलो तो सत्य की सत्य बोल रहे, झूठ बोल रहे, सब ऐसे छाती में देते हैं। हाँ, क्योंकि सब लोग जानते छाती में हृदय में प्रभु है, इसका कोई नकार नहीं सकते। तो एवं व्यवस्थिता बुद्धा समाधाय मनोरिधि, क्योंकि मन से ही अभी संभव है और शरीर से तो संभव नहीं है। जजाप परमम जाप्यम, परमम भागवत लीलागुण समन्वित जो स्तोत्र है उसको मैं जपूंगा। जप तो बहुत प्रकार के हैं, किंतु यहाँ परमम का अर्थ कर रहे कि भागवत संबंधी लील नाम रूप गुण लीला का जो स्तोत्र है उसी को मैं गाऊंगा। और प्राग जन्मने अनुशिक्षितम, शिक्षितम और अनुशिक्षितम, जैसे निरंतर निरंतर मैं इसी को जाप किया था, स्तुति का पाठ किया था, अनुशिक्षितम प्राग जन्मने, पूर्व जन्म में जब मैं इंद्रदुम्न राजा थे तो उस समय इस स्तोत्र का मैंने पाठ किया था। तो प्राग जन्मने अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में मैं इसका बहुत पाठ किया। तो कैसे याद है, इस टीकाकार ने लिखे है मृत्यु मृत्युम अपि अनुगच्छते विद्या, विद्या जो है मृत्यु को अनुगमन करते है, विद्या पीछे पीछे चलते हैं। कोई भक्ति कर रहे, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ, भगवत गीता में भगवान लिखते हैं, बोलते हैं, नेहाभी क्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। जो भी कर चुके हैं, हरिनाम कर रहे, भागवत अध्ययन सेवन कर रहे, पढ़ रहे, उसका भक्ति कभी नष्ट नहीं होंगे। तो जो जितना अधिक नाम जप करेंगे, अधिक समय से अधिक नाम जप करेंगे, उसका उतना ही रहेगा। एक हम लोग को शिक्षा मिलती है, हम जो भजन कर रहे, नाम जप कर रहे, भगवान को प्रणाम कर रहे, धाम की परिक्रमा कर रहे, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अनुशिक्षितम विद्या, इसको ध्यान रखें, मृत्युम अपि, मृत्यु भी अनुगच्छते, अनुगमन करता है। मृत्युम अपि अनुगच्छते विद्या, विद्या मृत्युम अपि अनुगच्छते, विद्या मृत्यु का अनुगमन करता है। अर्थात भक्ति हमेशा रहेगा, जहां तक मेरा हो चुका है उसके बाद फिर शुरुआत होगा। फिर लिखते हैं कि एवं व्यवस्थिता बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मने अनुशिक्षितम। उसके बाद एक श्लोक लिखते गजेंद्र जी स्तुति करते हैं, नमो भगवते तस्मै जत एतत् चिदात्मकम्, तस्मै नमो भगवते तस्मै जत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि विजाय परेशायाभि धीमहि। यहाँ प्रश्न होता है कि आप जिसका भजन करेंगे उसको आप जानते हैं, उसको जानते हैं ना? हाँ, जानता हूँ कि वो भगवान है। नमो भगवते तस्मै जत एतत् चिदात्मकम्, जिसको मैं भजन करूंगा वो भगवान है। भगवान कौन है? जो सड़ैश्वर्य पूर्ण है, ऐश्वर्य समग्रश्च विजस्य जसस श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव सम्यग् इति भग इति गणा। इस भगवान के छह स्वरूप है, छह लक्षण है। तो इस छह ऐश्वर्य समन्वित जो भगवान, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसका भजन करूंगा। नमः नमः अभिधीमहि। आज यहाँ सिद्धर्थ में लिखते हैं जो ग्राह से आज शरीर व्याप्त है, ग्राह शरीर को पूरा निगल चुका है, आज शरीर में कोई क्षमता नहीं है। इसी अवस्था में और शरीर से प्रणाम करने की बहुत इच्छा, किंतु शरीर से प्रणाम नहीं कर पा रहे। आज उन्होंने क्या कर रहे कि नमः और अभिधीमहि, आज स्मरण कर रहे, मानसिक प्रणाम कर रहे। मानसिक सेवा श्रेष्ठ होता है, कभी कभी शरीर से प्रणाम नहीं हो पा रहा है, तो ध्यान से भी करने से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कभी कभी शारीरिक बीमारी विभिन्न कारण बस हम लोग कर नहीं पाते, किंतु यहाँ लिखते हैं नमो अभिधीमहि, आज प्रणाम को ध्यान से कर रहे, आज मैं शरीर से नहीं कर पा रहे, इसी अवस्था में कर रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि आज किसी पारिवारिक समस्या आने पर हम तो कुछ भजन भी नहीं कर पाते, किंतु आज इसी अवस्था में 1000 वर्ष तक युद्ध चल रहे, शरीर पूरा क्षीण हो चुका है, शरीर का सारा जो खून है सब खा पी चुका है, आज उसी अवस्था में गजेंद्र जी भगवान का स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, मैं पूर्व जन्म में इसका बार बार इसको स्मरण किया। इसी प्रकार सब भक्तों से इसे शिक्षा लेनी है कि मुझे हरिनाम और जो भक्ति है इसको कभी भी हल्कापन से ना ले। ये बहुत बड़ी चीज है कि मुझे आज भक्ति प्राप्त हुआ है, भगवान की और भक्तों की कृपा से मुझे भक्ति मिली है, इसको कभी साधा आसान माने सरलता से नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। तो नमः भगवते तस्मै जत एतत् चिदात्मकम्। एतत् का अर्थ कर रहे ये देहादि से लेकर जो ब्रह्मांड तक ये सब जड़ है, किंतु भगवान के चेतन से कारण चेतना के कारण ये सब चेतन हो गया, ये सब चिन्मय हो गया। जैसे 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 हम लोग अन्न पाते हैं, अन्न जो पाते हैं, अन्न रोटी दाल सब्जी जो भी पाते हैं, ये अगर भगवान को अर्पित ना ही करे, अगर ऐसे भोजन कर ले तो इसमें माया का बंधन प्राप्त होता है, कर्म बंधन लगता है। अगर वही प्रसाद भगवान को प्रसाद भोग लगा के पाया जाए वो चिन्मय हो जाते हैं। इसीलिए चिदात एतत् बहुत मार्मिक शब्द है, जत एतत् चिदात्मकम्, जो आज जड़ था वो आज चिन्मय को चिन्मयता को प्राप्त हुआ, कारण कि भगवान के कारण। आज गजेंद्र जी कह रहे हैं कि आज मेरा शरीर चिन्मय हो चुका है कि भगवान का स्पर्श मिला, कि भगवान आज मुझे स्वीकार किया। तो आगे उसको मिलेगा कि किस प्रकार से उनको भगवान स्पर्श कर रहे। तो गजेंद्र जी याद कर रहे कि नमो भगवते तस्मै जत एतत् चिदात्मकम्। इस विश्व आगे श्लोक में हम लोग पढ़े हैं जेन चेतयते विश्वम, जिसकी चेतना से विश्व चेतना को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आज उनका विश्वास है कि भगवान के कारण इस जगत पूरा चेतन प्राप्त हो रहा है, चिन्मयत्व तो प्राप्त कर। जैसे उदाहरण, जब भगवान श्री राम जा रहे थे तो रास्ता में निषाद राज से मिले, निषाद राज से जब मिले तो बहुत सम्मान किए, बहुत आदर दिए, और भगवान भी बहुत अपना सखा माने कि निषाद मेरे सखा है। तो कुछ दिन के बाद जब भरत महाराज अयोध्या वासियों के साथ जा रहे थे लौटाने के लिए प्रभु श्री राम को कि प्रभु आप आए, तो आने लाने के लिए जब जा रहे थे, साथ में गुरु वशिष्ठ जी भी जा रहे थे। तो जब गुरु वशिष्ठ को दर्शन किए भील वो जो जाति के जो निषाद राज, तो निषाद राज ने प्रणाम किए कि प्रभु आप जाति से तो ब्राह्मण हैं, आप सर्वोपरि है, तो बहुत आदर दिए। तो राजा वशिष्ठ ने गुरु वशिष्ठ ने उसका आलिंगन किया, किसको आलिंगन किया, निषाद को आलिंगन किया। आए निषाद कहे कि मुझे मेरी छाया किसी को पड़ जाते तो उसको नहाना पड़ता था, किसी मेरी छाया किसी को पड़ जाते तो उसको नहाना पड़ता था, किंतु आज प्रभु के कारण मेरा शरीर चिन्मय हो गया, आज प्रभु मुझे स्वीकारा, मैंने प्रभु का प्रणाम किया, उनको उनको अपना माना, आज उन्हीं के कारण मेरा आज इतना आदर है, आज इतना सम्मान है, आज जो गुरु वशिष्ठ जाति में जो ब्राह्मण जो सर्वोपरि है आज वो मुझे आलिंगन दे रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ये हमारे कारण नहीं है, ये प्रभु श्री राम के कारण है, हमारे मुझमें कोई गुण नहीं है, ये प्रभु श्री राम ने मुझे अपनाया। इसी प्रकार हनुमान जाति, देखिए हनुमान प्रभु श्री राम जी के भक्त रहे, भगवान श्री राम उनको अपना सेवक बनाया, आज सेवक बनाने के कारण आज हनुमान संसार में सबका पूज्य हो गया, आज हनुमान जी का सब भोग लगा के संसार में बांटते हैं, बांदर का प्रसाद सब लोग खा रहे हैं, एक हनुमान का प्रसाद सब हम पा रहे, एक जाति के होने नाते होने पर भी भगवान के प्रसाद से भगवान की कृपा से आज वो कितने वंदनीय कितने प्रशंसनीय, आज सारा संसार उनकी पूजा कर रहे हैं। जाति से इसी प्रकार वैष्णव को जाति पाति नहीं देखना चाहिए, वैष्णव प्रसाद पाते हैं भगवान के नाम करते हैं, उनका सारा अंग चिन्मय हो चुका है, भले किसी भी जाति का हो। एक ये आता ना, जाति पाति कोई ना माने, जो हरि के भजे सो हरि के होए, कोई किसी प्रकार जाति पाति की विचार ना रखे, जो भगवान के भजन करते हैं वो हमारा पूज्य है आराध्य है। इसी प्रकार नमो भगवते तस्मै जत एत चिदात्मकम पुरुषायादि विजाय परे साया भी धीमहि, भगवान पुरुषायादि विजाय, पुरुषाय आदि विजाय, आदि अर्थात प्रकृति, बीज अर्थात पुरुष, आदि विजाय परेशाय, परेशाय अर्थ है कि ब्रह्मादि का भी जो आराध्य है, परेशाय का अर्थ है टीकाकारों ने लिखे हैं कि जो ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी का भी जो आश्रय है, ब्रह्मा जी जिसके आश्रय लेते हैं, जिसका ब्रह्मा जी भी जिसका आश्रय ग्रहण करते हैं, ए प्रभु के मैं अभी धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ, नमो भगवते तस्मै जद एतत् चिदात्मकम पुरुषायादि विजाय परेशाया भी धीमहि। देखिए चेतन की जब विभीषण के लंका में गए थे, कौन, हनुमान जी, हनुमान जी विभीषण से कहे कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप चलिए हमारे साथ, प्रभु आपको शिकार करेंगे, प्रभु आपको शिकार करेंगे। हाँ देखिए मैं तो बहुत नीच जाति के हैं, अपने दीनता का व्यक्त कर रहे, प्रभु मुझे शिकार किया, आपको भी शिकार करेंगे, आप चलिए। तो वहाँ हनुमान जी अपने बहुत दीनता रख किया, मेरा नाम कोई सुबह सुबह सुन ले तो उसको भिक्षा भी नहीं मिलेगा। हाँ रामायण में ऐसे लिखा है कि हनुमान जी अपने दैन्यता को व्यक्त कर रहे और विभीषण से कह रहे कि प्रभु आप चलिए, आप ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण है, आपको प्रभु स्वीकार करेंगे। तो कहने का उद्देश्य है ए तो चिदात्मकम, जो भी प्रभु के संपर्क में आ जाए उसका जो जागतिकता है जड़ता है वो जड़ता नष्ट हो जाएगा और चिन्मय को प्राप्त करेंगे, ये कहने का उद्देश्य है। कोई अगर नाम के संस्पर्श में आ गया, कोई भक्तों के संस्पर्श में आ गया, वो निश्चित धीरे से चिन्मय को प्राप्त करेंगे, वो जाति नहीं रहेगा। ऐसे साधारण जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहे उसमें बहुत कमी है, वो जीवित हुए होते हुए भी मुर्दा है, उसमें कोई बल नहीं है, उसमें कोई उसका नाम कोई चिंता नहीं करते, किंतु जो प्रभु के भक्त है वो चिन्मय है, सब उसकी वंदना करते हैं, कोई कितनी बड़ी पद पर अधिष्ठित हो उसका कोई सुमिरन नहीं करते, कोई उसका ध्यान नहीं रखते, किंतु जो भगवान के भक्त है तो वो बहुत वंदनीय है, उसका कोई तुलना नहीं है, जाति पाति कोई विचार नहीं। जब ए तो चिदात्मक, क्योंकि जब प्रभु के संस्पर्श में आ जाते वो व्यक्ति वो वस्तु पदार्थ सब चिन्मयता को प्राप्त करते हैं, इस भाव का ही है। और परे साया भी धीमहि, कि मैं ब्रह्मा जी को भी आराध्य है, मैं उसकी ध्यान करता हूं। तो वैष्णव में कभी जाति बुद्धि ना देखें। फिर श्लोक आया तस्मिन जस्मिन इदम जतश्चेदम जेनेदम जय इदम स्वयं, जो अस्मात् परस्माश्च तम प्रपद्य स्वयं भुवम। जस्मिन इदम, ये जो ब्रह्मांड जो है जिसमें अधिष्ठित है, ब्रह्मांड जिसमें है, अधिष्ठान भगवान है, जस्मिन, देखिए चार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, चार इदम है, जस्मिन, जतः, जस्मात और ज, चार शब्द है। जस्मिन भगवान में जगत अधिष्ठित है, भगवान में ये विश्व ब्रह्मांड है, जस्मिन। जतश्चेदम, ये उपादान किससे निकलता है, प्रभु से, जत जत मतलब जस्मात, जतश्चेदम, ये विश्व किससे आया है, भगवान से आया है। जस्मिन इदम जतश्चेदम, जेनदम, ये संसार किसने निर्माण किया है, भगवान ने निर्माण किया है। और जो अस्मात परस्मात तम प्रपद्य स्वयं भवम, ज इदम स्वयं, ये ब्रह्मांड जो स्वयं प्रभु ही है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ ठेला ले जा रहे हैं, ठेला जो ठेला के संस्पर्श में है, ए ठेला हट, ऐसे बोलते हैं ना, वाह कुछ, ए रिक्शा, रिक्शा बोल के पुकारते हैं, क्योंकि रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा वाला नहीं कहते, ए रिक्शा इधर आओ, ओ रिक्शा। इसका अर्थ ये है कि जो विश्व प्रभु बन गया, आज विश्व प्रभु, प्रभु ने विश्व को बनाया, इसलिए प्रभु को विश्व कहा जाता है, विश्व, हाँ, क्योंकि जगत प्रभु, प्रभु ही है, प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस प्रकार उदाहरण, ये तो उदाहरण, जैसे हम लोग कुछ चीज को कोई आरोप कर लेते, उसी को बोल के पुकारते, ए रिक्शा, ए ठेला, वा कुछ इस प्रकार के शब्द हम लोग यूज करते, कि जो चीज वो अपनाया, लिंक, थोड़ा सा लिंक होने के कारण उस चीज उसको कहा जाता है। इसी प्रकार जब प्रभु विश्व को बनाया, ये विश्व स्वयं प्रभु है, जस्मिन इदम जतश्चेदम, ये विश्व ब्रह्मांड प्रभु में अधिष्ठित है, प्रभु में ये विश्व है, जस्मिन इदम जतश्चेदम, जो उपादान प्रभु से निकल रहे। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपने पेट से एक लोरी व एक ट्रंक कागज निकाल दे, ऐसे कोई व्यक्ति है, कोई नहीं है कि इस, देखिए प्रभु अपने शरीर से सारा तत्व को निकाल दिया, पूरा पंच महाभूत जो है प्रभु के शरीर से निकले हैं, कोई उसकी वंदना नहीं करते। किंतु अगर कोई व्यक्ति अपने पेट से एक ट्रंक अगर कागज निकाल दे, उसका पेपर टीवी में सब छप जाएगा, हाँ, किंतु जिन्होंने इतना बड़ा काम किया उसकी कोई वंदना नहीं करते। आज प्रभु ने कितनी बड़ी काम किया, पूरा विश्व को बनाया, पूरा विश्व को रचा, एक एक ब्रह्मांड को निर्माण किया, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि लोग, कितने प्रकार के मानुष, एक मानुष एक मनुष्य से कोई भिन्न भिन्न, अलग अलग, फिर भी उसकी कोई वंदना नहीं करते, उसकी कोई तारीफ नहीं करते। और कोई व्यक्ति थोड़ा सा कुछ दिखा दे, आज कुछ अलौकिक दिखा दे, उसकी पेपर टीवी सब मीडिया कवर कर लेते हैं, किंतु मीडिया इसको कवर नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि बुद्धि मलिन है, हाँ। जस्मिन इदम जतश्चेदम जेनेदम जे इदम स्वयं, जो अस्मात परस्मात, अस्मात मतलब जो कार्य भगवान ने जो कार्य किया, जो अस्मात पर, जो अस्मात मतलब यहां लिखते हैं अस्मात कार्य, माने ये जो विश्व कार्य निर्माण के जो भी कार्य है इसको अस्मात करे, और परस्मात मतलब कारण, कार्यो कारण का भी प्रभु है श्री कृष्ण भगवान। जो अस्मात परस्मात जो जो पर तम स्वयं भुवम, वो स्वयं भू है, प्रभु स्वयं भू है, उसको कोई मालिक नहीं है, जो स्वयं भू है, स्वयं भुवम, जो परस्तम में उसकी शरण में जाता हूं, तम प्रपद्य स्वयं भू, क्योंकि प्रभु स्वयं भू है, प्रभु का कोई मालिक नहीं है। जो अस्मात परस्माश्च परः तम प्रपद्ये स्वयंभुवम्। तो आज का जो श्लोक है, आज श्लोक से, ये तीसरा नंबर श्लोक से भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, जावत अध्याय समाप्ति, परम ऐश्वर्यम विवृण्वन आह जावत अध्याय समाप्ति, जहां अध्याय की समाप्ति, स्तुति की समाप्ति करेंगे, भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। जसात्मनेदम निजमायार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अभिद्ध दृक्साक्षी उभयम् तदीक्षते स्वात्म मूलो बत मम परात्पर। इस श्लोक में कि भगवान प्रकाश कर रहे, संसार को प्रकाश करके जस आत्मने इदम, सात्मने स आत्मने इदम, इदम विषम जस आत्मने, अपने में सात्मने इदम निज माया अर्पितम, अपनी माया से इसको प्रकट करते हैं, इस संसार को प्रकट करते भगवान अपनी माया से। और यहां लिखते हैं क्वचित विभातम क्वचत तिरोहितम, कभी ये जो देव मनुष्य जो रूप देख रहे हैं हम लोग, ये प्रभु की देवा रूप है। क्वचित विभातम, कभी प्रकाश करते हैं और कभी तिरोहितम, लीन कर लेते हैं। तिरोहितम लीन, जैसे कभी कभी लोग दुकान, सुबह सुबह दुकान फैलाते और शाम को दुकान को समेट लेते, इसी प्रकार प्रभु संसार को फैलाते हैं और जो समय आता है फिर उसको ग्रहण कर लेते, समेट लेते। अभिद्ध दृक् साक्षी उभयम तदीक्षते, अभिद्ध दृक् करते हैं कि प्रभु जिसका दृष्टि अलुप्त दृष्टि, जैसे कोई व्यापारी करते किंतु कहाँ चोरी होता है कभी कोई उसको पता भी नहीं चलता है, कोई डिपार्टमेंट है बहुत चोरी हो रहे है उसको पता भी नहीं चलता, किंतु प्रभु ऐसे नहीं है, जो जो भी काम कर रहे प्रभु का एक एक सब नजर है, यहाँ का अर्थ ही है अभिद्ध दृक्। आज गजेंद्र कह रहे कि मैं आज कष्ट भोग रहा है, ये प्रभु के नजर से दूर नहीं है, प्रभु के नजर में है। अभिद्ध दृक, कोई भक्त कुछ कष्ट पा रहे, कुछ समस्या में है, प्रभु का नजर है उस पर, इसका अर्थ ये है। अभिद्ध दृक मतलब अलुप्त दृष्टि, उनका दृष्टि कभी छिपा हुआ नहीं है, वो दृष्टि हमेशा ही सब पर है। अभिद्ध दृक साक्षी है, प्रभु साक्षी है। तदीक्षते सबसे ईक्षण कर रहे, कैसे ईक्षण कर रहे, जैसे एक वृक्ष में दो पंक्षी है, एक फल का सेवन कर रहे और एक साक्षी होके देख रहे हैं, इसी प्रकार प्रभु है शरीर में किंतु सब कुछ प्रभु दर्शन कर रहे। जो जीव भगवान के भजन कर रहे, हरिनाम कर रहे, प्रभु ये भी देख रहे, और जो भगवान को भजन नहीं कर रहे, जो मुर्दा हुआ है उसको भी प्रभु देख रहे हैं। अभिद्ध दृक् साक्षी, वो साक्षी है, सब कुछ देख रहे हैं। तदीक्षते उभय की देख रहे, जो क्वचित विभातम क्वचत तिरोहितम, दो चीज को दर्शन कर रहे, कभी प्रकाश कर रहे देव मनुष्य आदि रूपे न प्रकाशित कर रहे और कभी तिरोहित कर रहे, उसको अपने में ग्रहण कर रहे, इसको दोनों को प्रभु देख रहे। अभिद्ध दृक् साक्षी उभयम तदीक्षते स्व आत्म मूल, प्रभु का मूल कुछ नहीं है, प्रभु का मूल प्रभु ही है, प्रभु का मूल स्व आत्म मूलो भवति जस्य स, जो प्रभु मूल का भी मूल है, प्रभु ही मूल है, उसका भी मूल प्रभु ही है। जो स्व आत्म मूलो अवतु, अवतु मतलब आप मुझे रक्षा करें। देखिए यहाँ एक कोई प्रश्न उठा सकते कि किसी किसी ने प्रश्न उठाते कि भाई वृक्ष पहले आया कि बीज पहले आया है, अगर आप कहेंगे बीज आया तो बोले भाई वृक्ष कहाँ से आया है, अगर आप बीज कहेंगे वृक्ष कहेंगे तो बीज कहाँ से आया, ये रह जाएगा। अगर आप कहेंगे हमारे पिता माता है, उनका पिता माता है, उनका पिता माता सबका है, अगर ये देखते जाए आखिरी में कौन आएगा, ठाकुर जी भगवान ही आएगा, फिर उनसे ही सब आए, तो उनका भी कोई प्रश्न उठे, उनका भी कोई तो कुछ ना होगा हाँ, कोई जो माइंड जिसका क्रिटिकल है वो ऐसे प्रश्न उठेगा, उनका भी कोई कारण होगा। किंतु भागवत गीता इसका निराकरण किया कि बीजांग सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, हाँ सभी भूतों का बीज मैं ही हूँ, यह सब प्रश्नों का निरासन कर दिया हाँ, कि और कोई प्रश्न उठा नहीं सकते, प्रभु सबका बीज है। बीजांग मांग सर्वभूतान, सर्वभूतानाम बीजांग माम विद्धि, सभी प्राणियों का जो बीज है वो मैं ही हो, इसको जानो हाँ। अगर आप प्रश्न उठा रहे कि हमारे जैसे कारण है ऐसे प्रभु का भी कारण है, अच्छा यहाँ और देखिए खूब सुंदर प्रश्न है कि पुरुष आय पूरे सेते इति पुरुष, जो पूर्व में शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं, जैसे ब्रह्मांड में प्रभु है, प्रभु भगवान को पुरुष कहा जाता है, जो प्रभु है जो भगवान को तो पुरुष कहा जाता है, जीव भी तो पुरुष है तो जीव भी तो भगवान हो सकता है, जीव जो जीवात्मा एक शरीर में है वो भी तो छोटा सा भगवान है, वह भगवान स्वरूप है। तो कहे कि नहीं, जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। यहाँ टीकाकारों ने लिखे है कि जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। भगवान का कोई भगवान में कोई विकार नहीं है, जीव में विकार है। स्वात्म मूलो अवतु मम परात्पर, परात्पर अर्थ है परात, परात मतलब ब्रह्मा जी से भी जो श्रेष्ठ है। परात्पर, परात मतलब एक भगवान का नाम है, परात्पर जो जो ब्रह्मा शिव आदि जो भी श्रेष्ठ है, हाँ तो उसका भी जो श्रेष्ठ है वो परात्पर का मैं, वो मुझे रक्षा करे। ब्रह्मा जी गजेंद्र जी यहाँ स्तुति में कहते हैं कि प्रभु मुझे अवतु रक्षतु, प्रभु मुझे रक्षा करे। जस आत्मनिदम निजमाय अर्पितम क्वचित विभातम क्वचत तिरोहितम, प्रभु कभी भी प्रकट करते हैं और कभी उसको तिरोहित करते हैं, किंतु प्रभु दोनों को जानते हैं। तद उभयम अविद्ध दृक, प्रभु अविद्ध दृक मतलब अलुप्त दृष्टि, प्रभु का दृष्टि कभी लोप नहीं है, वो हमेशा सब कुछ देख रहे है। इस संसार में कहां क्या हो रहे हैं, आज देखे ना बड़े बड़े लोग ये लगाते हैं अभिजंता, हाँ सुपरवाइजर, किंतु फिर भी गड़बड़ी होती है, सब जगह कुछ ना कुछ घटना होती है, किंतु प्रभु का ऐसे कोई रचना में उनकी जो नियंत्रण में कोई घटना कुछ ऐसे नहीं है, सब कुछ नियम से चल रहा है। जैसे सूर्य चंद्र वरुण जो भी काम दिया गया है सब ठीक ठीक से सब कर रहे, कोई घोटाला नहीं है, किंतु संसार में सब जगह घोटाला है, किंतु इसका अविद्ध दृक नहीं है, अलुप्त दृष्टि नहीं है, दृष्टि कुछ भिन्नता है, किंतु प्रभु का दृष्टि अलुप है। अविद्ध दृक साक्षी, वो साक्षी है, ऐसे नहीं कि मैं भजन कर रहे कुछ देखा नहीं, ऐसे नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं जो मैं भजन कर रहे इसका कोई बिल दूसरे जगह बन रहे हैं, हम सबका कर्तव्य है कि भजन करके जाए, भजन करे, निरंतर भगवान का नाम सुमिरन करे। अविद्ध दृक साक्षी उभयम तदीक्षते, उभय को देखते हैं, जो विभातम है और जो तिरोहित है, दोनों को प्रभु देखते हैं। वो प्रभु स्व आत्म मूल है, उसका कोई मूल नहीं है, प्रभु का मूल प्रभु ही है। स्व आत्म मूलो अवतु मम परात्पर, मैं उसी परात्पर प्रभु का मैं, वो मुझे रक्षा करे। देखिए यहाँ एक श्लोक और है कि भगवान के कारण सब कुछ चिन्मय हो जाता है, सब चेतन सब दिव्य हो जाता है। जैसे शिव जी का कोई भूमिका नहीं, शिवो शिवभूत, शिवो शिव अभूत, शिव भी मंगलकारी बन जाते हैं। कारण क्या कि भगवान का चरण धवन जो जल है, उस धवन वो जो जल को गंगा जी को अपने सिर पर रखने से वो शिव भी मंगलकारी बन जाते। अगर भगवान से संपर्क नहीं होते तो शिव को कोई पूछते नहीं थे। अगर शिव का कोई पूछे, आज उनका इतनी महिमा है, उसका एक ही कारण प्रभु का चरण जो गंगा जी आज उसको सिर पे धारण किया। हाँ इसी प्रकार कोई अगर हम जो भक्ति कर रहे आज हमारी क्या भूमिका बताइए। एक जंगल में मेरा जन्म है, एक गांव में, आज श्रील प्रभुपाद व उनकी अनुजाई उनके आदेश निर्देश के कारण आज भगवान के जो भी टूटी फूटी शब्द में भगवान के गुण महिमा वर्णन कर रहे हैं, कारण क्या है? संत महापुरुष महाभागवत की कृपा है। इसी प्रकार गुरु कृष्ण के अनुगत्य में रहे, उनकी आदेश निर्देश से सेवा करे तो हम सब चिन्मय बन जाएंगे। जत एत चिदात्मकम, बिना 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 कारण से बिना टाच से कभी चिन्मय नहीं बनेंगे। अगर आप मनमुखी होकर चलेंगे तो आप खाली हाथ में जाना पड़ेगा, अगर अनुगत्य में चलेंगे उनकी उनकी आदेश लेकर चलेंगे तो हम सब चिन्मयता को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कभी भी गुरुमुखी होना चाहिए, कभी मनमुखी नहीं होना चाहिए। गुरु के आदेश से, गुरु जैसे कहे, गुरु कहे, हम काल चैतन्य भागवत में पढ़ रहे थे कि मालिनी जो मुकुंद है, जो मुरारी है, मुरारी की पत्नी, मुरारी महाप्रभु के हनुमान थे, हनुमान महाप्रभु अवतार में मुरारी हनुमान के अवतार है। मुरारी जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य लीला में हनुमान है। एक शिक्षा बहुत सुंदर शिक्षा है। तो महाप्रभु है तो नित्यानंद प्रभु आए तो मुरारी सबसे पहले नित्यानंद को प्रणाम किए, उसके बाद महाप्रभु को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद जब प्रणाम किए तो महाप्रभु कहे कि मैं यही शिक्षा देना चाहते कि सबसे पहले नित्यानंद को प्रणाम करें, उसके बाद आप मुझे प्रणाम करें इस शिक्षा देने के लिए। फिर जब मुरारी की पत्नी प्रसाद पा रहे थे तो प्रसाद ऐसे माने ठीक से नहीं, ऐसे छोड़ माने से ठोक रहे थे, मतलब ठीक से नहीं अब पा रहे थे। भक्ति भाव से कुछ भी हो सकता है तो पा रहे, तो किंतु वहां ये शिक्षा मिलती है कि जो जो पतिव्रता होती है, जो स्त्री होती है, वो पति के अनुसार चलते हैं, पति के अनुसार चलती है। पति जैसे जैसे उनका सुख मिले ऐसे ही हो, वो ये नहीं विचार करते आप ऐसे क्यों महाप्रभु प्रसाद पा रहे, बिल्कुल टिप्पणी नहीं किए, जैसे दे रहे वो मुरारी भी ऐसे ही मैं प्रसाद पा रहे भाव से, कृष्ण भाव में कृष्ण रस में डूबे हुए हैं। तो महाप्रभु बुझ समझ रहे हैं कि ये इनका ये स्थिति नहीं है, ये बिल्कुल दिव्य स्थिति में है। महाप्रभु बहुत आदर से पा रहे हैं। और मुरारी के अगले दिन आकर कहेंगे मुरारी मुझे आज अजीर्ण हो गया, आज मुझे कुछ दवा, क्योंकि मुरारी डॉक्टर भी था। हाँ फिर मुरारी के जो कड़ुआ का जल जो मुरारी पानी पीते थे उसी पानी का पीकर महाप्रभु का स्वास्थ्य ठीक हो गया। कहने का उद्देश्य ये है कि मुरारी महाप्रभु को भोग आरोग रहे, भोग पा रहे और सप्लाई कौन कर रहे, उनकी पत्नी। हाँ किंतु एक भी टोका नहीं, आप ऐसे क्यों सर्विस कैसे सर्विस करते हैं, जैसे पति की इच्छा जैसे पवाने की इच्छा ऐसे ही करे। कहने का उद्देश्य ये है कि इस प्रकार से अगर हम सेवा करते रहे पति के अनुसार, वो भी मनमुखी नहीं, जैसे उनका सुख मिले वैसे ही सेवा करते रहे। तो आज के श्लोक में जस्यात्मनेदं निज मायार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितं अविद्या दृक्साक्षि उभयं तदीक्षते स्वात्ममूलो वतुमं परापः, ओ प्रभु मुझे रक्षा। देखिए शरीर में प्राण नहीं, शरीर में शक्ति नहीं है, इसी अवस्था में भजन कर रहे हैं। और हमारे थोड़ा सा भी कष्ट है, सांसारिक कुछ समस्या है, सब भजन छूट जाता है। ये बड़ी शिक्षा है। हमारे संसार में बहुत सारी समस्या है, एक एक समस्या गिनते गिनते भजन का गायब हो जाते। तो इसी अवस्था में भी गजेंद्र भजन कर रहे, भगवान का नाम ले रहे, एक कम बड़ी बात नहीं है। तो इसी प्रकार इसका अभ्यास, क्योंकि प्राग जन्मने अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म मैंने बहुत, इसी प्रकार जो सीनियर भक्त है जो बहुत दिन से भजन कर रहे हैं उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत काल से भजन कर रहे, बहुत नाम प्रणाम कर चुके हैं, बहुत हरिनाम कर चुके हैं, बहुत भगवत प्रसाद पा चुके, वो शरीर चिन्मय हो चुके, भले वो शरीर आज भगवान सेवा नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका अवज्ञा करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे। क्योंकि हो सके कि उनका शरीर आज साथ नहीं दे रहा है भजन के साथ, किंतु उनका शरीर चिन्मय हो चुका है, इसी प्रकार उसका आदर निरंतर करते रहना चाहिए, कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो आज इसी शब्दों में विराम देता हूँ, और कोई भी कुछ भूल त्रुटि आपने हिसाब से क्षमा कर दे। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।